मैं आपका प्रश्न रिपीट करूंगा, डोंट वरी। वो क्या है, सब भ्रम है उनका सब। तो व्यक्तिगत रूप में जब हम अकेले होते हैं, सफर में होते हैं कहीं और अकेले काम के लिए गए होते हैं, तो तभी भगवान के लिए क्या इतना, क्या इतनी तीव्रता से भगवान के विषय में कैसे हो सकता है ना? उसका एकदम सिंपल उत्तर है, उसका सिंपल उत्तर यह है कि हमारी साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं भी रहे, भक्तों के बीच में रहे, अकेले रहे, दूर रहे, पास रहे, अंदर रहे, बाहर रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, साधना जो है ना हमारा सबका पायाभूत आधार है, मूलभूत स्थायी भाव आधार हमारा साधना है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, रसिकों की मुलाकात, रसिकों का संग प्राप्त होना और ब्रज के प्रति आकर्षण पैदा होना, ब्रज के लिए रुचि पैदा होना, ये सब वो का सारा मूल साधना में ही है। वो फॉर्मूला पर प्रभुपाद जी ने सबको दिया है। मैंने कभी भी मैं जा जाकर प्रयास नहीं किया है किसी रसिकों को मिलना है मुझे, इसको मिलना है, उसको मिलना है। वो जो भी परिचय हुआ है वो अपने आप हुआ है, हमारी सेवा के अंदर ही हुआ है। हम अपनी सेवा के लिए जाते हैं ब्रज में। मुझे अभी भी याद नहीं कि कभी मैं ऐसे ब्रज में गया होगा कि मैं ऐसे केवल जगह ढूंढने के लिए गया, मतलब नए नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अभी ये टूर पर हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कौन सी नया जगह मिलना है, कभी भी मैंने आज तक नहीं किया है। लेकिन भगवान की ऐसी दया है कि मेरे हर ब्रज की एक ट्रिप में एक कोई नया स्थान मुझे अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, दर्शन हो जाता है उसका, फिर मैं अगली बार लोगों को वहाँ पर यात्रा कर लेके जाता हूँ। ऐसे ही चमत्कारिक रूप से हर एक सफर में नए नए जगह प्रकट हो जाती है। तो उसका क्या है, मैंने तो प्रयास तो नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल इस लास्ट में बरसाने यात्रा में गया था ना, कैंप में, अभी अभी 2018 में गया था, तो मैं मेहरानो गाँव में गया। और आप सुनिए आश्चर्य की बात कैसी है, नंद बाबा का जन्म का तिथि और यशोदा माई का जन्म का तिथि सैकड़ों साल से लोगों भूल गए थे, लोगों को पता ही नहीं है, मतलब गुम हो गई तिथि उनकी। तो किसी कन्हैया बाबा ने, जो गोवर्धन में रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं वो, उन्होंने ना बहुत रिसर्च किया और शास्त्र प्रमाण से यशोदा बाबा माता का और नंद बाबा का जन्मदिन का तिथि ढूंढ के निकाला। और अभी अभी 4-5 साल से ही नंदगांव में नंद बाबा जन्मोत्सव और यशोदा माई जन्मोत्सव मनाने लगे, देखो। और वो इस बार वो तिथि हमारे कैंप में आ गई यशोदा मैया की, तो नंद बाबा के मंदिर के जो गोस्वामी, उन्होंने बहुत जिद किया कि आप यहीं पर हो, आपको आना ही चाहिए, और हमने आपके लिए प्रसाद का इंतज़ाम किया है, महाप्रसाद का, दर्शन का इंतज़ाम किया है। और मेहरानो गाँव में उस समय बहुत बड़े मेला लगता है, बहुत बड़ा आनंद होता है, वहाँ लोग कृष्या गाते हैं, को आना ही चाहिए, तो कैंप छोड़कर कैसे जाए हम लोग। फिर उन्होंने बहुत जिद किया, फिर हम लोग कुछ समय के लिए गए। तो नंद पहली बार यशोदा माई के जन्मदिन में नंद बाबा मंदिर में गए, वहाँ पर इतना सुंदर वातावरण था ना, सारे जितने गिने चुने गोस्वामी लोग हैं ना, वो सब इकट्ठा थे उस समय, एक एक लग नहीं, जितने नंद बाबा के पंडित विज्ञान ज्ञानी गोस्वामी हैं, सेवायत हैं, वो सब एक जगह पर बैठ कर प्रसाद पा रहे हैं। वो दृश्य भी अद्भुत था बहुत। और यशोदा माई का दर्शन किया, उनके 56 बुक का दर्शन किया, उनका प्रसाद पाया, और वही हमको लेके गए मेहरानो गांव में, और वहाँ पर यशोदा माई का दर्शन किया पहली बार। उनके जन्मदिन पे दिन ही पहली बार उनके गांव में गए, सोचो आप। तो ऐसा विशेष प्रयास नहीं किया किस चीज़ का, भगवान ही कृपा कर देते हैं। ऐसे एक दिन कथा सुनी थी ब्रजेश्वर महादेव की, कि जहाँ पर ब्रिश्वानु बाबा ने राधा रानी को प्राप्त करने के लिए उस शिव जी का आराधना किया था, कामेश्वर महादेव का भी किया था, ब्रजेश्वर तपस्या किया था, ब्रिश्वानु महाराज की तपस्थली है वो। तो ऐसे ही हमारी गोस्वामिनी मैया है, वो मैं ऐसे ही उधर गया था, क्या नाम उसका, जल महल भानुखर, ऐसे गया था, तो मैया मिल गई मुझे, बोले क्या कर रही है, वो शिव जी की पूजा कर रही है। बोले वो ब्रजेश्वर महादेव कहाँ है, बोले चलो ये नहीं है, वो दूसरे हैं। हमारे पास एम्बुलेंस थी, तुरंत बैठ के हम लोग उधर गाँव में अंदर खेत में चले गए, वहाँ पर उसका दर्शन हुआ। तो उसी यात्रा में 5 बार लोगों को ले गया मैं, यहाँ पर सारी कथा पढ़ ली उसकी और दर्शन किया, इतना आनंद आया उस समय। ऐसे ही एक बार रत्न कुंड पे गए थे, उधर गुड़िया गुड्डी का दर्शन है राधा रानी का, उधर श्याम शिला देखी। ऐसे संतों की कृपा से हो जाता है काम। लेकिन आपको देखना यही है कि इसमें प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है, जितना भगवान को दिखाना है ना उतना भगवान आपको दिखाएंगे। आपको जूझने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, साधना जो दिया गुरु महाराज ने ना वो अच्छी तरह से करना है। उसमें वो लीला का पठन भी आता है ना, आप पढ़ने को बताए ना, आपको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से आपको रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी, तो भगवान उस इच्छा को पूरी करेंगे। और एक रहस्य है उसके अंदर, एक साधना और दूसरा वैष्णवों की सेवा। वैष्णव की सेवा आप करते रहिए, वैष्णव आपसे संतुष्ट हो जाएंगे ना हृदय से, हाँ ऐसे बार बार से नहीं, हृदय से आपको प्रसन्न होंगे, खुश होंगे आपके ऊपर, तो भगवान उस वैष्णवों की खुशी की वजह से आप पर कृपा करते रहेंगे, इसमें निश्चित संदेह नहीं है कोई। तो भगवान की ऐसी लीला है कि हमने तो खुद तो गए नहीं थे बरसाने में कभी, गुरु महाराज ही लेके गए थे 1986 में सबसे पहले। तो वहाँ पर जो तार बोलते ना छिड़ गए उस समय, वो अभी भी बज रहे हैं, अच्छी तरह से बज रहे हैं। तो कृपा है उनकी सबकी, इतना प्रेम प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके लिए कृत्रिम रीति से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है वो कुछ कम नहीं है, और हर एक व्यक्ति को जो जो आवश्यक है वो उसको देते रहते हैं। कोई विशेष व्यक्ति कोई नहीं है, जो भी अच्छी तरह साधना कर रहा है वो भगवान के लिए विशेष है। जो अच्छी तरह गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है वो भगवान के लिए विशेष है। जो उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहा है वो उनके लिए विशेष है। कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं उसके लिए, कोई कमांडर बनने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रस्टी बनने की जरूरत नहीं, कोई GBC बनने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी है अपने को जो बताया गया है वो करना है अपने को। तो तीव्रता अगर हमको चाहिए तो उसके लिए यही प्रयास करना है। अच्छी अधिक मैंने शुरुआत में अभी प्रयास में क्या कहा था, वही राधा माधव है उसमें गहराई में आपको चिंतन करना है, वही गुरु पूजा है उसमें गहराई में आपको चिंतन करना है, वही फूल है जब चरणों में अर्पण कर रहे हो कह रहे हैं कि मैं मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ इस फूल के माध्यम से। एक फूल अर्पण कर रहे हो एक बात हो गई, और वो कह रहे हो कि ये जीवन है मेरा, मेरे आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ, वही ना वही फूल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन भावना बदल गई ना। तो वो आपको अंतर्मुख होकर और गहराई में जाना है। रोज जब आते हो वही काम कर रहे हैं लेकिन और अंतर्मुख होकर अधिक दिल लगाकर करना है। वो हमारे थे ना वो अभिराम गोपाल प्रभु, सब लोग भोजन बनाते भगवान के लिए, आप लोग भी बनाते होंगे बहुत सब लोग मिलकर। लेकिन वो जब सब्जी बनाते थे तो उनके सब्जी में जो वो काटते थे ना, समझो दूधी काट रहे हैं, तो सारे दूधी एक ही साइज के काटते थे, वो क्यूब क्यूब्स एक साइज के सारे, बाकी जो छोटे मोटे हैं वो डिस्कार्ड, और उसकी ही सब्जी बनाते थे वो। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि सब्जियां सब लोग बनाते हैं लेकिन मुझे भी जब परोसा जाता है तो मुझे 3-4 लोगों के द्वारा बनाया गया मिलता है मेरे थाली में, लेकिन तभी भी इस प्रभु जी ने बनाया हुआ जो सब्जी है वो ऐसा तेज से चमकता था उसके अंदर, ही सब्जी वुड बी इफलजेंट, ऐसा कहते थे वो। मतलब थाली में 4 लोगों ने बनाया हुआ सामान दिया हुआ है लेकिन जो उन्होंने बनाया हुआ है वो ऐसा मानो प्रकाशमान है। तो सब्जी सब लोग बना रहे हैं लेकिन एक के सब्जी बनाने में इतना प्रेम और इतना क्या कहते हैं ना प्रिसीजन, मतलब इतनी परफेक्शन है उसके अंदर कि वो गुरुजी को बना रहे हैं, गुरुजी के लिए बना रहे हैं, इसलिए उसकी इतनी चेतना उसकी शुद्ध है कि वो अपना बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट जो उसका स्किल है वो उस पर लगा रहे हो। क्या आप नहीं कर सकते ऐसा? हम कर सकते हैं। अगर आपको बोले आम काट के दे दो प्रभु जी आए, तो आप भी उसको ऐसे प्रेम से काट के उसको डिज़ाइन बना के दे सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे काट के उसको देख सकते हैं, वही आम है वो लगने वाला भी वैसा ही है। लेकिन एक व्यक्ति जब दे रहा है इस प्रकार से तो आपको उसका स्वाद डिफरेंट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक है काटना और एक है उसके पीछे की भावना, प्रेम आपुल की आदर, और वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी को अर्जित करना है हमको, हाँ उसी को कमाना है, तब जाकर हमारा जीवन जो है ना उसी कार्य में धन्य हो जाएगा। वही बेर रोज निकाल रही है वो। 80 साल रोज बेर निकाल रही है, चख रही है, रख रही है, चख रही है, रख रही है, वही नियमा नियम के विरुद्ध काम रोज कर रही है वो। और उसका परिणाम उसको 80 साल के बाद में मिला, वो झूठे बेर भगवान ने खाए उसके। लेकिन कितना प्रेम रहेगा उसका उसके अंदर। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं श डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करेंगे, अभी खाने दो। लक्ष्मण ने बोला क्या कौन सी औरत है ये जंगल की औरत, क्या रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं, शिष्टाचार नहीं, क्या समझते अपने आप को, झूठे बैर खिला रही है, ये कोई तरीका होता है? उनके मुंह में दिख रहा है सब, ये वाक्य प्रकट हो रहे हैं उनके मुंह से। भगवान उनको बोल रहे चुप रहो। और तीव्रेण भक्ति योगे न, ये भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि तीव्र भक्ति तो होना ही चाहिए, एक ना एक दिन तो होना ही चाहिए। अभी आपने गैस चलाया है, दूध रखा है उसके ऊपर, हाँ ऐसे एक लकड़ी जल रही है, ऐसे 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 एक फ्लेम हिल रही है, दूध गर्म होगा क्या? आपको 1, 2, 4 ऐसे लगाना पड़ेगा, फूंकर मारना पड़ेगा उसको अच्छी तरह से, इसी ज्वाला बनेगी ना तुरंत दूध उबलने लगेगा। तो अभी आपके हाथ में है, आपको 4 घंटे में दूध को उबालना है कि 15 मिनट में उबालना है, आपके हाथ में। सब भावना का खेल है प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, इनका प्रश्न यह है कि भक्ति पूर्व जन्म के अनुसार मिलती है कि हमारे हमारे मेहनत से होती है? हाँ, देखिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति का जीवन पूर्णता भौतिक चीजों से अलिप्त है, स्वतंत्र है, यानी स्पिरिचुअल लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मटेरियल एक्टिविटी। भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन पूर्णता भिन्न है, भौतिक जीवन की कोई भी अवरोध भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है। देर कैन बी नो मटीरियल इंपेडिमेंट इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, भक्ति के जीवन के प्रगति में कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती, ऐसे रूप गोस्वामी ने कहा है। तो आपने अगर अनजाने में, जैसे मैंने कल बताया ना सुकृति, आपको पता नहीं लेकिन आपने किसी का भक्त का मदद कर दिया तो आपको वो सुकृति खाते में जमा हो जाएगा, उसके वजह से आपको भक्ति मिलेगी, उसके वजह से आपकी भक्ति की शुरुआत होगी, जो आपने जाने अनजाने में कभी किसी का सेवा किया होगा। लेकिन उसके आगे की प्रगति किसी भौतिक चीज पर डिपेंड नहीं रहती है, वो आपकी इच्छा पर ही रहती है। आप कितने भी गरीब होंगे तो भी आपके हाथों से करोड़ों का उत्सव हो सकता है। जैसे हमारे राधा रमन प्रभु हमारे है ना, अब भी तो कैंसर में तो गए ही थे वो, मतलब हम लोग ने आशा ही छोड़ दिया था उनका, अच्छे हो गए वो। कैंसर से मृत्यु के मुख में जाने के बाद अच्छे हो गए और अभी अपने शेगांव गांव में जा रहे हैं ऐसी अवस्था में, और हर महीने में या पता नहीं दो हफ्ते में 3 प्रोग्राम करते हैं, उसमें 500 से 800 लोग बैठते हैं अलग अलग, और 500 से 800 लोग सब डिवोटी बन रहे हैं शेगांव में। तभी भौतिक स्थिति क्या बोलती है, कैंसर का मरीज है तो सफर नहीं करना चाहिए, यहां वहां खाना नहीं चाहिए, दोबारा कैंसर हो सकता है, बीमार हो सकता है, इसके इतना मेहनत नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी इतनी इच्छा तीव्र है, उसको लग रहा है कि भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दे दिया है, अब ये जीवन उनकी सेवा में होना चाहिए, मर गए तो भी उनकी सेवा में मरना चाहिए, ये भाव से गए तो शेगांव में अभी इतना तूफान उठ रहा है। 800 लोग बैठते हैं कथा में, वो भी रोड के ऊपर, रोड में पंडाल बांधते हैं और उधर इतनी भीड़ बन जाती है। 1 साल से जा रहे हैं, जन्माष्टमी किया, हर महीने जा रहे हैं, अपने खर्चे से जेब खर्च करके छुट्टी निकाल के अपनी जा रहे हैं। तो भौतिक बाधा क्या है, उनकी बीमारी, उनकी कमजोर सेहत, उनकी बढ़ती हुई उम्र है सब, है ना। लेकिन इच्छा के सामने भगवान उसको इतना प्रतिसाद दे रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो आपको भक्ति की, भक्ति का लाभ जो है वो किसी सुकृति से या किसी अनजान चीज से आपको मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म के कुछ संचित होंगे तो ही आपको भक्ति मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कितने लोग ऐसे होते हैं कि आप ये पालघर में जी रहे हैं और यहाँ से हरिनाम संकीर्तन जा रहे हैं, वो लोग प्रसाद भी कुछ फेंक रहे हैं, रथ यात्रा भी जा रही है, वो भी कोई प्रसाद फेंक रहा है आपको मिल रहा है, कोई हरनाम कान पे गिर रहा है आपके, आपके घर में कोई आके प्रसाद दे रहा है आपको कि भाई चलो मंदिर के बाजू में सब पड़ोसों को देना चाहिए, तो सब पड़ोसों के आप प्रसाद दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनको प्रसाद मिल रहा है और उनके भाग्य को आप जगा रहे हो। या तो आपने किसी का सेवा किया है तो आपके संचित है, या तो किसी ने आपको भगवान से आके जबर से जोड़ दिया है, आपको नहीं चाहिए लेकिन आपको प्रसाद मिला है जगन्नाथ का, आपको फूल मिला है जगन्नाथ का, आपको ये मिला है, आपको वो मिला है, या आपके हाथ से किसी की सेवा हो गई, आपने कोई जबरदस्ती क्यों ना हो दान 100 रुपया दे दिया, वो जन्माष्टमी लग गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली ऐसे करके, हम लोग लोगों की सुकृति बढ़ा रहे हैं, लोगों का भाग्य बढ़ा रहे हैं। ऐसा भी आपका भाग्य बढ़ सकता है, आपने कुछ नहीं किया खुद लेकिन किसी के द्वारा बढ़ा आपका अनजाने में, तो भी आपको भक्ति मिल गई, लेकिन भक्ति मिलने के बाद में उसमें प्रगति करना आपके हाथ में है, आपके इच्छा के ऊपर आधारित है। वो क्या करते मालूम है ना, ड्रग वाले लोग क्या करते, ड्रग वाले लोग जो ड्रग बेचते हैं वो सबको पहले फ्री में दे देते, आपको पता नहीं आप चॉकलेट खा रहे हो, एक बार आपको नशा लग गया उसका फिर वो आपको बेचते हैं और आपको पैसा देकर खरीदना पड़ता है उसको। उसी तरह से भक्ति में भगवान पहले आपको फ्री सैंपल दे देते हैं आनंद का, आओ नाचो खाओ पियो मजा करो, आके स्वागत करेंगे, आज जो नए आए हैं उनका स्वागत हो, 3 बार हरिबोल बोलो, सब कुछ करेंगे। एक बार आप अंदर आ गए फिर आपको मेहनत करनी है, फिर आपको जप करना है, वो आपके जप नहीं कर सकते, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया, अभी आपको जप करना है, आपको साधना करनी है, आपको उपवास करना है, आपको जो करना है वो करना है, और आपने छोड़ दिया तो आप वहीं कभी रह जाएंगे, और आप करते रहे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये मत समझना कि स्थिति मेरी ऐसी है ये मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, सोचना ही नहीं ऐसे, कभी सोचना ही छोड़ दो ऐसा। ये रूप गोस्वामी का वाक्य हमेशा याद करो कि कोई भी संकट कोई भी आपदा कोई भी विपरीत स्थिति आपके भक्ति के रास्ते में नहीं आ सकती, आप आने देंगे तो आएगी लेकिन अपने आप में वो आपके भक्ति मार्ग के प्रगति की बाधा नहीं बन सकती, उतनी उसमें शक्ति नहीं है, आप शक्ति देंगे और बंध जाएंगे तो वो आपको अवरोध करेगी। नहीं तो जो दृढ़ निश्चयी भक्त है उसके जीवन में कोई भी स्थिति, जीवन में कर्मों के अनुसार जो आती है वो कर्मों के अनुसार आने वाली स्थिति उसके जीवन के भक्ति के मार्ग की प्रगति में बाधा नहीं बन सकती। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा, लगे रहो, चिंता मत करो, ये दुनिया में रहते हुए संकट आएंगे ही आएंगे, विपरीत स्थितियां आएंगी आएंगी, और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप दुनिया से, प्रभुपाद बताते थे व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन उनमें से किसी भी संकट की ऐसी शक्ति नहीं है कि आपकी भक्ति की मार्ग को अवरोध बनकर खड़े रहे, ये आपको विश्वास होना चाहिए। भगवान का नाम जो है ना उसके सामने कोई संकट टिकता नहीं है, कोई संकट कोई भय कोई ऐसी स्थिति भगवान के नाम के सामने खड़ी नहीं रह सकती है, कोई पाप खड़ा नहीं सकता है, नो सिन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इसलिए निर्भय होकर अपना कार्य करो। आप बोले ये 2 बच्चे हैं मैं तो स्त्री हूँ ये होता है ये होता है, अभी आप लोग कर रहे हो ना इतना, संडे सुबह से शाम तक यहाँ पर लगे रहते हो आप लोग, हफ्ता भर काम करते हो, संडे को होता और जल्दी उठ के यहाँ पर आते हो और देर तक यहाँ पर काम करते हो, वो वापस थक के वापस मंडे को काम शुरू करते हो, करते हो कि नहीं आप लोग, सब लोग मिलकर करते हो। तो अगर आपको कहना है क्या करेंगे देखो अभी इतना काम है इतना सब भागना पड़ता है, यहाँ से मुंबई जाना पड़ता है, इतना सफ़र है, इतना ओवर टाइम ड्यूटी है, बच्चे हैं वो बीमार है घर पे, लेकिन अगर आपको आना है तो आप आते ही हो, कोई धक्का नहीं मार रहा आपको, आप बोलेंगे नहीं आ सकता हूँ तो आपको कोई धक्का नहीं मारेगा, लेकिन आप आना है तो आप आते हो, उसमें भी एडजस्ट करके आते हो करके जाते हो, क्योंकि आपको करना है, वो करना है तो आपको रोक नहीं सकता है कोई, लेकिन आपको बहाना बनाना है तो बहुत सारे बहाने प्रकृति सृष्टि आपको देगी, बहुत सारे बहाने देगी, तो जी ऐसा मत बैठो सीधे बैठो, बहुत सारे बहाने आपको देंगी प्रकृति, और आपको बोलेंगे बैठो अभी घर पे आराम से, बहुत भक्ति की आपने 30 साल भक्ति की, अभी कितना भक्ति करोगे अभी बैठो आप ऐसा बता के आपको बिठा देंगे उधर, ठीक है, वो आपके आदेश के ज़्यादा ही 5 मिनट लिए मैंने। हरे कृष्ण।